ओम शांति, ओम शांति। आज के इस शुभ दिन पर प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आप सभी बाबा के घर में पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई है। हम ब्राह्मणों तो इसी खुशी में रहते हैं कि अभी श्री कृष्ण वैकुंठपुरी आई कि आई। बाबा ने हम सबको नॉलेजफुल बनाया है। ये कलयुगी सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है। ये रात पूरी होगी, सवेरा आएगा और उसमें प्रथम राजकुमार पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ इस धरा धाम पर आ जाएगा। तो वो सतयुगी दुनिया के नज़ारे बाबा कहते हैं आपकी नज़रों के सामने घूमने चाहिए। बस इतना ही है, ब्रह्मा बाबा को इतना नशा रहता था, जब हिस्ट्री हाल में बाबा जाते मुरली सुनाने के लिए तो सामने एक ट्रांसलाइट है, अभी भी रखी है। ऊपर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र है और नीचे श्री राधे श्री कृष्ण का है। तो बाबा उस चित्र को लाइट को जलवाते और कहते हैं, बड़े खुशी से कहते हैं, आज मैं बूढ़ा हूँ, कल मैं मिचनू बनूँगा, और डांस करना शुरू कर देते हैं। इतना नशा था ब्रह्मा बाबा को कि आज क्या हूँ कल क्या हूँगा। तो ऐसा नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण जो सबका प्यारा है, दुलारा है, प्रथम राजकुमार है, ऐसी दुनिया वैकुंठ की पुनः स्थापित हो रही है। लोगों ने तो श्री कृष्ण जी को द्वापर में दिखाया, युद्ध के मैदान में दिखाया, गीता ज्ञान देते हुए दिखाया, लेकिन परमात्मा ने उनकी जन्म पत्री बता दी कैसे आत्मा नंबर वन जो वैकुंठनाथ के रूप में है, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, वही सृष्टि चक्र में पाठ बजाते जब कलयुग के अंत में आता है तब शिव बाबा का रथ बनता है, उन्हीं का नाम पड़ता है प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं, नई दुनिया बनाने के लिए रुद्र यज्ञ की स्थापना करते हैं। तो 1936 में शिव बाबा ने इस रथ को चुना और बाबा ने इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की और उस स्थापना में अपने बच्चों को, ब्राह्मणों को सेवा का भाग्य दिया। तो मुझे जो टॉपिक दी गई थी वो थी यज्ञ सेवा, यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक। तो आप सभी बाबा के बच्चे दिल्ली राजधानी में रहते हैं, श्री कृष्णपुरी का आह्वान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सतयुग की कैपिटल भी दिल्ली ही होगी, यमुना का किनारा ही होगा। तो ऐसी दुनिया बनाने के लिए आप सब निमित्त आत्माएं हैं और बाबा ने इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की सेवा की जवाबदारी ब्राह्मण बच्चों पर रखी। ब्राह्मण मुख वंशावली, डायरेक्ट ब्रह्मा मुख से जिन्हें जन्म मिला, उनको कहा बच्चे इस यज्ञ को संभालना है। यज्ञ रच दिया, लेकिन यज्ञ दिन प्रतिदिन जो विस्तार को पाता है, लोग तो यज्ञ जब शब्द कहते हैं तो सोचते हैं शायद कोई यज्ञ कुंड होगा, उसके अंदर कोई अग्नि होगी, उसमें कुछ स्वाहा करते होंगे, लेकिन बाबा ने इस यज्ञ का पूरा नाम दिया राजस्व अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अश्व कोई घोड़े को सुहा नहीं करते, लेकिन इस तन रूपी अश्व को इस यज्ञ में सेवा में हम लगा देते, सुहा कर देते। तो आप सबने बाबा के इस रचे हुए यज्ञ में अपने तन को, मन को, धन को, जो शक्तियां हैं उनको लगाया है ना, सफल किया है। किसने किसने सफल किया है देखो, सोच समझ के हाथ उठाना। देखो बाबा ने हमारा भाग्य बनाने के लिए यज्ञ की सेवा की जवाबदारी सौंपी। बच्चे यज्ञ की रक्षा करना, यज्ञ की संभाल करना, यज्ञ को विस्तृत विस्तार रूप में लाना, यह ब्राह्मणों का काम है। और जो बच्चे सच्चे पक्के ब्राह्मण बनते हैं, जाति के नहीं, मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख से जिन्होंने जन्म लिया, मर्जीवा जीवन प्राप्त की, इस मर्जीवा जन्म में जितना ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का हम पालन करते हैं उतना यज्ञ की रक्षा होती है। यज्ञ रक्षा कोई हम स्थूल में तो कोई पहरा नहीं दे रहे हैं, और स्थूल में इस यज्ञ पर कोई वार भी नहीं होता, कोई हमारे दुश्मन है ही नहीं, लेकिन दुश्मन है केवल पांच विकार, पांच बुराइयां जो हरेक के अंदर व्याप्त है। उनके कारण चलते चलते इस यज्ञ में कई प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, रुकावटें आती हैं। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को कहा कि बच्चे अगर इस यज्ञ की रक्षा करनी है तो सबसे पहले आप सभी मर्यादाओं में पक्के हो जाओ। जितना दृढ़ता के साथ ईश्वरीय मर्यादाओं का आप पालन करेंगे उतना आप पहले स्वरक्षक बनेंगे। पहले स्वरक्षक बनो, फिर मर्यादाओं की रक्षा करो, फिर यज्ञ की रक्षा के निमित्त बन सकते हो। वैसे तो यज्ञ बाबा का है, उसकी रक्षा बाबा खुद करता ही है, उस पर कोई भी आपदा ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी बच्चों का भाग्य बनाने के लिए बच्चों को ये सेवा देता है। बच्चे तुम अपने पवित्र वाइब्रेशन से, बहुत शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से इस किले को मजबूत करो, इसमें कोई भी लीकेज ना हो, कोई दरार ना हो। जैसे किले की मजबूती में सभी ईंट एक समान चाहिए, अगर एक ईंट भी बीच से निकल जाती है तो किला कमजोर पड़ जाता है। तो आप हम सब इस किले की नींव हैं, ईंटें हैं। किसी भी कारण से किसी मर्यादा का उल्लंघन करके इस किले को कमजोर नहीं बनाना, वही यज्ञ के लिए विघ्न रूप बन जाता है। इसलिए बाबा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर बाउंड्री बनाई मर्यादाओं की, और वो इतनी पक्की बाउंड्री है अगर कोई क्रॉस न करे तो सदा सुरक्षित है, और स्वसुरक्षा के आधार से वो यज्ञ रक्षक बन सकता है। तो वो बाउंड्री मैं आज आपको 5-7 शब्दों में सुनाता हूँ, क्योंकि बाउंड्री का पता तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले संकल्पों के लिए मर्यादाओं की बाउंड्री, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, किधर संकल्पों को ले जाना है किधर नहीं ले जाना है। इसलिए बाबा की मुरलियाँ चलती हैं, बच्चे मन जीते जगत जीते। पहले बाबा कहते थे माया जीते जगत जीत, लेकिन धीरे धीरे देखा कि मन बच्चों का बड़ा चंचल है, कंट्रोल में नहीं आता, इसलिए मन जीते जगत जीत। मन में कोई भी व्यर्थ साधारण संकल्प उत्पन्न न हो, ये बाउंड्री है। इसको अच्छा चिंतन देने का अभ्यास चाहिए, अच्छा भोजन दो और इसकी लगाम। कहते हैं ना, मन एक घोड़ा है, बहुत चंचल है, भटकता है, एकाग्र नहीं होता, तो श्रीमत की लगाम है इसके लिए। और श्रीमत ही वास्तव में मर्यादा की बाउंड्री है। जो संकल्प मेरी और दूसरों की उन्नति में बाधक हैं, वो सब व्यर्थ हैं, मुझे नहीं सोचना है, मेरे काम के नहीं हैं। व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों पर फुल अटेंशन। अगर संकल्प शक्ति के महत्व को हम सब समझ लें ब्राह्मण जीवन में, तो असंभव भी संभव हो सकता है। जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होने लगेंगे, सोचेंगे और हो जाएगा। प्रैक्टिकल हमने देखा, हमने दादी जानकी जी को देखा, इतना संकल्पों पर नियंत्रण, कंट्रोल, और उन्होंने जो सोचा वो करके दिखाया। जहां पांव रखे वहां बड़े सेंटर बनवा दिए, जिधर गए हो गई, कोई बोला नहीं, कोई ज्यादा मेहनत नहीं की। बाबा ने कहा, बच्चे तुम विदेश में जाओ, मधुबन का मॉडल बनाना। बस गई और मॉडल बना दिया, बढ़िया मॉडल, लंदन में, अमेरिका में, जहां पांव रखे वहां सेवाओं का विस्तार कर दिया। और इतना कंट्रोल, नंबर वन स्टेबल माइंड पूरे वर्ल्ड में। जब साइंटिस्ट ने मशीन से चेक किया, फर्स्ट नंबर में उसके माइंड स्टेबल था, स्थिर था, संकल्पों पर इतना कंट्रोल था। बहुत छोटी छोटी बातें, हम तो सदा दादी के अंग संग बैठते थे, पत्र लिखते थे, और जो उनके अंदर होता था सब सुना देती थी खुले दिल से। तो एक दिन मेरे कहती है, तुम मेरा बिल लिखो, बिल। तो मैंने कहा, क्या है दादी आपके पास, क्या बिल करेंगी? कहते, तुम लिखो, लिखो। तो मैं कॉपी पेंसिल लेके गया था, लिखाओ। कहते, लिखो, जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे पर कोई भी फूल माला नहीं चढ़नी चाहिए। हमने कहा, ये कैसे लिखेंगे, ये कैसे हो सकता? आप संस्था की हेड हैं, मुखिया हैं, आप शरीर छोड़ेंगी तो ऐसे थोड़ी लोग हैं जो आपके ऊपर कोई फूल नहीं चढ़ाएगा। कोई को नहीं आना है हमारी अर्थी के पास। तो मैं हंसता रहा, लेकिन उन्होंने कहा और मैंने लिख लिया। और ऐसे समय पर शरीर छोड़ा जो एक भी फूल दिखाने वाला नहीं। कोविड के समय 20 मार्च 2020 को लॉकडाउन हुआ और 27 तारीख को शरीर छोड़ा। और इतना सख्त लॉकडाउन था, जो बड़ी मुश्किल से उनको पांडव भवन के चार धाम कराए, 20 लोगों से अधिक कोई आजू बाजू खड़ा नहीं हो सकता, सामने तो कोई आ ही नहीं सकता, कोई माला नहीं, कोई फूल नहीं, कोई आने वाला नहीं। हमने कहा, धन्य है माता जी, तुम्हारे संकल्पों में क्या शक्ति है। लास्ट में मैं एक चंदन की माला लेके गया, उन्हें नहीं, मैं तो जाऊंगा आज, मैं तुमको धन्यवाद दे के आऊंगा कि आपके संकल्प सिद्ध हो गए। जो सोच लिया हो गया, इतना अपने संकल्पों पर ब्रेक। तो हम सब ध्यान दें, ब्राह्मण जीवन में कितना समय, कितने संकल्प हमारे व्यर्थ जाते, लेना देना कुछ नहीं, ऐसे ही देखेंगे, ये यहाँ पर क्यों लगाया गया, ये यहाँ क्यों किया गया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, प्रश्न उठाते रहेंगे, कुछ मतलब नहीं हमारा, लेना नहीं, कुछ कहना नहीं। इसलिए सभी ध्यान दो, संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प से ब्रह्मा ने नई सृष्टि की रचना की है, हम सब उनके बच्चे हैं। जैसी सृष्टि अपने लिए बनाना चाहो, जो सोचो वो बन जाओ, कभी कमजोर संकल्प नहीं का, कैसे होगा, ये तो संभव नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। असंभव भी संभव हो सकता है, अगर संकल्प को हमने अपनी मर्यादा की बाउंड्री में रखा है तो। शुभ संकल्प करो, श्रेष्ठ संकल्प करो, अपने और दूसरों के कल्याण के संकल्प करो, बहुत ऊंचाई तक अपने संकल्पों को ले जाओ। संकल्प को शून्य तो किया ही नहीं जा सकता, उसको कोई रोक तो सकता नहीं, उसका काम ही है, नाम ही है संकल्प, जो सारा कल्प चलता है। इसके बिना तो इस मशीन में वो रह ही नहीं सकता। ब्रेन काम ही करना बंद कर दे, शरीर डैमेज हो जाए, तो हो सकता है कोमा में चला जाए, उसको संकल्प न चल रहे हों, लेकिन संकल्प तो सारा कल्प चलते हैं। तो संकल्प के लिए जो मर्यादाओं की बाउंड्री है, हम सब इसको ध्यान दे करके इसको अपने नियंत्रण में रखें। और व्यर्थ को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी विधि है, जितना समय जब मिले अच्छा साहित्य, अच्छा संग, अच्छा भोजन। क्यों बाबा इतनी भोजन की परहेज बताता है? इसके हाथ का नहीं खाओ, उसके हाथ का नहीं खाओ, जो भिखारी हैं, पतित हैं, उनके हाथ का भोजन नहीं करो। सात्विक, शुद्ध, जहाँ तक हो सके अपने हाथ से बना के भगवान को भोग लगा के खाओ। मन पर अन्न का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, चंचल है, नहीं कंट्रोल होता है, उसका कारण है कहीं न कहीं, जिसके पास आए खा लिया, जो आया पी लिया, जब आया पी लिया। खाना पीना, इसकी फुल अटेंशन देना, अन्न का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है संग, कहते हैं जैसा करते हैं संग वैसा लग जाता है रंग। अगर कमजोर का संग करेंगे, कोई व्यर्थ सोचने वाले का, व्यर्थ बोलने वाले का, हमेशा कोई कोई हैं जो कमेंट्स करते रहते हैं, कोई न कोई नुक्स निकालते रहते हैं, कभी मुरली में निकाल देंगे, कभी बड़ों में निकाल देंगे, कभी यज्ञ में निकाल देंगे, व्यर्थ सोचने की आदत बन गई। उनका दृष्टिकोण ही ऐसा है, वही दिखाई देता और कुछ दिखाई नहीं देता। एक दिन दादी कहती है, कोई नहीं, दादी को कहा, दादी यज्ञ में ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये वैसा करता। अरे तुम्हारे को चश्मा कौन सा लगा है? कमी देखने का चश्मा पहना है क्या? 99% 98% जो अच्छाई है, उसकी बजाय तुम 1-2% कमियों को देख रहा है। वो तो है, संगठन है, हो सकता है कोई नीचे ऊपर हर एक के संस्कार हैं, हिसाब किताब हैं, तुम कमियों पर ही नजर डालता है। जो अच्छा हो रहा उसको तो देखने का चश्मा पहन, अच्छाई को नहीं देखता है, कमियों को देखता रहता है। जो कमियों को, किसी के अवगुणों को देखता है, वो गुणवान कब बनेगा? इसलिए बहुत ध्यान देना, अगर हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, हर विशेषता में, हर कला में संपन्न बनना है, तो हर एक की कोई ना कोई एक विशेषता देख लो, सुन लो। कहते हैं दत्तात्रेय जो थे, यहाँ पर माउंट आबू में उनका मंदिर है, गुरु शिखर पे जाएंगे चोटी पर एक मूर्ति है दत्तात्रेय की, वो जी को भी देखता, उससे गुण उठा लेता और वो सर्व गुणों से संपन्न हो गया। दधीची अलग है, दत्तात्रेय अलग है। तो बाबा ने हम बच्चों को गुण ग्राही बनाया है, गुण देखने, विशेषताओं को देखने का चश्मा दिया है। इसलिए सभी बाबा के बच्चे संकल्पों को मर्यादा के लकीर के अंदर बांध के रखो, क्योंकि संकल्प एक बीज है। जैसा संकल्प का बीज है, अगर कटा पिटा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो वृक्ष भी वैसा निकलता है। बीज के ऊपर वृक्ष का आधार है, वृक्ष के ऊपर फल का आधार है। तो बोल और कर्म उस बीज के पौधे और वृक्ष फल हैं। कैसे बोल निकल रहे हैं उसका आधार, कहेंगे मैंने सोचा नहीं था बोल दिया, ऐसा हो सकता है क्या? हमने सोचा नहीं निकल गया, कुछ तो कभी सोचा होगा, कभी तो चिंतन में आया होगा जो मुख से निकल गया, अचानक थोड़ी निकल गया। इसलिए संकल्प को मर्यादा की बाउंड्री में रखना। उसके बाद है हमारी स्मृतियां, क्योंकि ऐसी बातें बुद्धि में बैठी हैं, भरी हुई हैं, रिकॉर्ड के अंदर आ गई हैं। वैसे पूछो बाबा की मुरली याद है, तो यही कहेंगे भाई बाबा की मुरली याद नहीं रहती, भूल जाती। क्यों भूल जाती? क्या भरा हुआ है बुद्धि में? अगर आपकी स्मृतियों में बहुत कुछ पास्ट की बातें हैं, संस्कारों की, जो बीती बातें हुई हैं, कर्म हुए हैं, उनको हम बिंदी नहीं लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, और हम कहें बाबा की अच्छी अच्छी बातें, संगम के सुहावने दिन, ये अनुभव याद रहे, कैसे याद रहेंगे? जब तक उनको विसरे नहीं तब तक इसकी स्मृति नहीं रहती। इसलिए जो बीत गई, जो बीतती हुई बातें हैं, बाबा कहते बच्चे बीतती को कहते हैं भूतकाल। भूत, भूत इसके सामने आएगा और डर जाएगा। क्यों भूत को, बीतती को याद करते हो? संकल्प को स्टॉप करो। पर वश स्थिति में देह मन के कारण अज्ञान के वश कोई भी बोल कर्म हो गए, कोई भी बातें घट गई, बीत गई, उनको मैं क्यों रिवाइज करूं? बाबा कहता बच्चे भूल जा, भूल जा। है भूलने की आदत कि वही याद रहता है, मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया। ये तो ड्रामा इतना अच्छा है जो पिछले जन्म की बातें भूल जाती, लेकिन इस जन्म के किए हुए कर्म भी कईयों के आगे भूत की तरह घूमते रहते, योग नहीं लगता। उसको लिख डालो, कागज पर लिख के बाबा को दे दो, सारी कर लो। बाबा कहता है माफी मांग लो, या किसी से हुआ है तो उसको माफ कर दो, तब योग लगता है। इसलिए स्मृति की मर्यादाओं को ध्यान पर रखना। और फिर है दृष्टि और वृत्ति। दृष्टि जिसके लिए बाबा बहुत फोर्स से मुड़ियां चलाते हैं, बच्चे क्रिमिनल आई, ये जो दृष्टि है इसकी आदत बन गई है किसी के रूप पर, किसी के रुपये पर, किसी की चमड़ी पर, किसी की दमड़ी पर, जाने की देखने की। कोई चमड़ी पर प्रभावित हो जाते हैं, कोई उसके धन पर, दमड़ी पर प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए दृष्टि को बहुत निर्मल रखना है, सिविल बन, आत्मा को देखने का अभ्यास करना है, न किसी के चेहरे को देख के फिदा हो जाना है, न किसी के धन को देख करके। आत्मिक दृष्टि बन जाए तब हमारी वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी, निर्मल हो जाएंगी, एकाग्र हो जाएंगी। तो दृष्टि को केवल आत्मा को देखने का, ये आत्माएं हैं, एक घर से हम सब आए हैं, ये सब पाठधारी हैं, और वृत्तियां हमारी अनासक्त हैं, एकाग्र हैं। क्योंकि जिस प्रकार के हमारे दृष्टि से संकल्पों की उत्पत्ति हुई, और जो संकल्प वृत्ताकार के रूप में बार बार याद किए, उनसे वृत्तियां बन गई। अब वृत्तियों को कोई चेंज करना चाहे, कहते क्या कहूँ, मेरी वृत्तियों में जैसे अंदर अंदर भर गया। एक है संस्कार, एक है वृत्तियां। संस्कार तो कर्म से बने, जब कोई चीज बार बार की गई तो संस्कार बन गए, लेकिन जो बात बार बार सोची गई वो वृत्तियां बन गई, और वृत्तियों से वाइब्रेशन बन रहे हैं। कर्मों से ऐसे कड़े संस्कार बन गए जिनको हम परिवर्तन करने में कितनी मेहनत कर रहे हैं, और वृत्तियां ऐसी हैं जो चंचल हैं, एकाग्र नहीं होती। बाबा के तब वृत्तियों को चेंज करने के लिए व्रत लो, दृढ़ता का संकल्प करो, व्रत, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं देखना है, व्रत ले। और संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बहुत अच्छी तपस्या करो, योग ज्वाला स्वरूप हो, संस्कारों का संस्कार हो जाए। तो वर्तमान समय मर्यादाओं की जो लकीर है वो हमारी रक्षा करती है, और ये बहुत मजबूत लकीर होनी चाहिए, ऐसे नहीं हम क्रॉस कर लें। अंगूठा भी बाहर गया तो रावण बैठा है, और साधु वेश में बैठा है, ले जाएगा शोक वाटिका में। ध्यान देना, सीताओं को मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है। बोल की मर्यादा है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो जरूरी है वही बोलो, नहीं तो चुप रहो, एक चुप सौ भला। बोलने की इतनी आदत है, जो आया बोल रहे हैं, जब आया बोल रहा है। कभी कभी ऐसे लगता है यहाँ से छूटो, भंडारे में जाओ तो ऐसे लगता है जैसे मार्केट में अंदर आ गए। कितनी बार मैं कहता हूँ, मैं मिट्टी कराने क्लास कराने जाता हूँ, मैं भोजन के ऊपर गए हो, भोजन करो ना, किसने कहा नहीं करो, शांति से करो। उसी समय इतनी बातें, जैसे बोलने का ऐसा रस बैठ गया जो समझते नहीं, बहुत बड़ी एनर्जी हम नष्ट कर रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चों को बोल ऐसे होने चाहिए जो सिद्ध होने वाले हों, इतना बोलो जो गिनती कर सको, वही बोलो जो हो सके, नहीं तो क्यों बोल रहे हैं, चुप रहो। ये बोल की मर्यादा है, कर्म की मर्यादा है, सुख देना सुख लेना, व्यवहार में सेवा की मर्यादाएं। परसों बाबा वरदान में कह रहे थे, सच्ची सेवा किसको कहा जाता है, सच्चे सेवाधारी कौन है। कहते हम सेवा पर हैं, खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो सेवा है क्या? किसी को परेशान करना, किसी के स्थान पर जाके अपना झंडा गाड़ देना, ये सेवा है? लेकिन सेवा के नाम पर एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देना, उसकी शांति छीन लेना, उसकी खुशी गायब कर देना, बाबा कहता सच्ची सेवा वो है जिसमें सबका स्नेह प्राप्त होता है, जिसमें अविनाशी सम्मान मिलता है, जिसमें सबके दिल की दुआएं मिलती हैं, जहां खुश नसीबी का अनुभव होता है, ऐसी सेवा की ये मर्यादा है। लेकिन हम सब कर रहे हैं, ठीक है, बाबा भी मुस्कुराता है, क्या सेवा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? नाम मान शान दिखावा, बाबा की मार्स, बाबा के खाते में उनका मार्स नहीं है। अगर वो विघ्न युक्त सेवा है, विघ्नों से मुक्त सेवा नहीं है, तो बाबा कहता मेरे खाते में नहीं, उसका रिकॉर्ड है, माइनस है वो। भले दो चार स्टूडेंट हैं, एक दो सेंटर हैं, लेकिन कम से कम स्थिति तो हो स्टूडेंट्स की। छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, डिस्टर्ब कर देना, क्या योग लगता होगा? हम सब पहले स्वयं की रक्षा, यज्ञ रक्षा और मर्यादाओं की रक्षा करें। पहले रक्षक बनो, फिर शिक्षक बनो, फिर शिक्षाएं देंगे तो प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो शिक्षक बहुत जल्दी बन जाते हैं, शिक्षाएं देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो शिक्षाएं कभी कोई के अंदर नहीं आती। ठीक है, कह रहे हैं, अच्छी बात है। तो बाबा ने हम सबको यज्ञ रक्षक बनाया, और यज्ञ रक्षक बनने के लिए स्वरक्षक और मर्यादा रक्षक बनाया। बहुत पवित्र विचार, शुद्ध विचार, स्वयं में इतने अच्छे विचारों का ओरा बनाओ, जो बाबा कहते हैं आप सबका लक्ष्य ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना, और फरिश्ता माना जिसका इस फर्श से, शरीर रूपी फर्श से कोई रिश्ता न रहे, माना जितना आत्मिक स्थिति में रहने का अच्छा अभ्यास है वही फरिश्ता है। वो लाइट के कार्ब में आ जाता है, उसका सूक्ष्म शरीर फरिश्ते का हो जाता, वो एक स्थान पर बैठे भी संकल्प शक्ति से अनेकों की सेवा कर सकता है, वो फरिश्ता स्थिति है। फरिश्ता ऐसा थोड़ी कोई उड़ रहा है, कोई पंख लगा करके इधर से उधर जा रहा है। कर्म में रहते हुए अगर कर्म बंधन नहीं है, कर्म का बोझ नहीं है, डबल लाइट है, हल्का है, जो सेवा की शुक्रिया बाबा आपने करा ली, समर्पित कर दिया, उन सेवाओं की आधार से हम सब फरिश्ते बन जाते हैं, उड़ते हैं, पांव कहीं जमीन पर नहीं रहते। कोई भी देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, संस्कार आकर्षित न करें। हैं संसार में, संसार थोड़ी छोड़ दिया, कर्म और सेवाएं नहीं छोड़ दी, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सेवा, कोई भी कर्म बंधन न बने। वर्तमान समय इस बात पर बहुत ध्यान देना, नहीं तो कर्म बंधन रस्सियों में बांध लेते और फिर योग नहीं लगता, खुशी नहीं रहती। बाबा ने यज्ञ रचा, यज्ञ के अंदर ब्राह्मणों की रचना की, और ब्राह्मणों को इतनी सुंदर मर्यादाओं की रेखा दे दी कि बच्चे इनके अंदर रहो, आप यज्ञ के अंदर यज्ञ रक्षक हैं। फिर हैं यज्ञ सेवाधारी, यज्ञ स्नेही और सहयोगी। बाबा ने हम सबका भाग्य बनाने के लिए, भाग्य विधाता ने हम सबके हाथों में कलम दी है श्रेष्ठ कर्म करने की, और वो श्रेष्ठ कर्म जो कर रहे हैं ब्राह्मण आत्मा, उनका ऊंचे से ऊंचा भाग्य बन रहा है। वो यज्ञ सेवाधारी यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, और वो यज्ञ सेवा में श्रेष्ठता तब आती है जब कहां भी करने का अभिमान ना आए, मैंने किया मैं करता हूं, जहां अहम भाव आ गया, मैं भाव आ गया, वहां वो सेवाएं श्रेष्ठ नहीं रहती, स्वार्थ वाली हो जाती। कई बार बाबा कहते हैं बच्चों को कच्चा फल खा करके खुशी होती है, पकने नहीं देते। कर्म किया, मान हो गया, शान हो गया, महिमा हो गई, स्टेज पर आ गए, पूछ लिया लोगों ने, बस खुश हो गए, उसी समय किया और उसी समय उसका फल खा लिया। भविष्य नहीं बनाते हैं, इसलिए सब ध्यान देना। जो बाबा की यज्ञ में सहयोग दो, बहुत गुप्त दान महापुण्य कहते हैं। ब्रह्मा बाबा जो नर से श्री नारायण पद प्राप्त करते हैं, उस दिन बाबा कह रहे थे भले मुझे पता है मेरा ये पद है, लेकिन उस पद के कारण पुरुषार्थ ही न बन जाए। निश्चित पद होते हुए भी बाबा ने अपने पर फुल अटेंशन रखा, कोई भी कर्म किया, इतना बड़ा यज्ञ चलाया, अपनी पूरी प्रॉपर्टी यज्ञ में समर्पित की, लौकिक को एक पैसा नहीं दिया, लेकिन कहीं पर उसका वर्णन नहीं किया कि मैंने किया, मैं पन को बाबा ने पहले समर्पित कर दिया। एक हाथ से किया, दूसरे हाथ को भी पता नहीं किया, वर्णन तो अलग की बात है। इसलिए कहते हैं गुप्त दान महापुण्य। सच्ची सेवा वो है जिसके अंदर करने का जरा भी कर्तापन का भाव, कर्तापन का अभिमान नहीं है, कराने वाला करा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई कहता है ये करते वो करते हैं, भाई बेटा पढ़ के लंबा सुना दो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखें ना, वो बुद्धि है ना वो इतनी शक्ति है, बाबा करा रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, कैसे चल रहा है। आज 20,000 लोग तीनों चारों स्थानों पर आ रहे हैं, भंडारा चल रहा है, लोग खाते हैं पीते हैं, क्लासेस करते हैं, रिफ्रेश होके जाते हैं, इतना भरपूर होके जाते हैं। कहाँ से आता है, कौन लाता है, कहाँ से खरीदारी होती है, कौन इसका मालिक है। एक बार यहाँ पर इसी ज्ञान सरोवर में हमारी कॉन्फ्रेंस थी रूरल विंग की, और उसमें दिल्ली से बड़े अधिकारी 2 रूरल डेवलपमेंट के आए थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ज्ञान कुछ बुद्धि में नहीं बैठ रहा था। मैं देखा है तो अलग प्रकार का विचार है इनका, तो मैं दोनों को उठा के यहाँ से ले गया बाहर, मैं चलो मेरे साथ। बाहर गया और यहाँ की जो डिपार्टमेंट थी, पहले इसके नीचे एक डिपार्टमेंट है, 3-4 डिपार्टमेंट में उसको घुमाया। पहले एक डिपार्टमेंट में ले गया जहाँ पर ये हम लोगों का सब सामान रहता ना, साबुन, तेल, जूते, चप्पल, फैंसी सामान हम उसको कहते हैं, उसके अंदर गया और वो भाई ने उसको दिखाना शुरू कर दिया, यहाँ पर इस क्वालिटी का इतना साबुन है, इतने प्रकार का वैरायटी तेल है, इतने प्रकार की कंघियाँ हैं, इतने प्रकार का, एक एक चीज बताता गया, सब लिस्ट लगी हुई है और सब कुछ व्यवस्थित, 8 नंबर के जूते, ये 9 नंबर के जूते, ये बहनों के जूते, ये भाइयों के जूते, चप्पल, वो सब देखता रहा। बाद में मेरे से पूछता है आप इसको कितना पैसा देते हो, ये जो भाई संभालता है, इससे से पूछो कितना पैसा मिलता है तुमको। तो वो ऐसा कहता, क्या पैसा, हम लोग पैसा पर लेके नौकर थोड़ी हैं, हम पैसे पर पेड सर्वेंट थोड़ी हैं, हम तो बाबा के घर की सेवा कर रहे हैं। वो इतना चकित हो गया, कहता है अगर मैं ऐसी डिपार्टमेंट को 2 मैनेजर रखूं और 2 लाख रुपया दूं तो भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये इंसान नहीं कर सकता है। मैं अनाज के बाद, अनाज का स्टोर भी इसके नीचे है, वो दिखाया, फिर उसके बाद उसको मसाले के स्टोर में ले गया जहां सब भोजन के मसाले रहते हैं, हल्दी, जीरा, धनिया, जो भी रहते हैं मसाले जो होते हैं बोरे के बोरे, उसमें जब ले गया वो भाई ने उसको दिखाया, इतना ये है, इतने किलो ये है करके, इतना ध्यान से देखे और बार बार, आप लोग फ्री सेवा करते हैं और इतने अच्छे ढंग से करते हैं, आपका बॉस कौन है, आपका मालिक, अरे मालिक तुम्हारा बाबा है, हमारे पास कोई थोड़ी मालिक बैठा है। वो चुपचाप इतना प्रभावित हुआ, ट्रेन में जाके लिखता है मेरे को, फोन पर बोलता है, भाई जी मुझे निश्चय हो गया कि ये कार्य भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता। आप देखो यज्ञ सेवा में सब काम कर रहे हैं, अगर आप लोग तन मन धन बाबा की यज्ञ में नहीं लगाओ यज्ञ कैसे चलेगा। लेकिन किसी को फिक्स थोड़ी किया गया तुमको इतना ही करना, तुमको इतना ही देना, जो देते हैं बाबा के घर में आता है। कोई 10,000 भी देगा, कोई 5 देगा, कोई 1,00,000 भी देके जाएगा, सबके सहयोग से इतना बड़ा यज्ञ निर्विघ्न चल रहा है। धन दे धन से सहयोग दे रहे हैं, लेकिन जो संभालने वाले तन लगा रहे हैं अगर वो बहुत इकोनॉमी से और बहुत व्यवस्थित ढंग से उसको संभाल रहे हैं तो उनका भी धन का सहयोग लग रहा है। इतने बड़े यज्ञ को इतना निर्विघ्न रीति से बिना कोई बोस बिना कोई डायरेक्शन के करना, भोजन इतना बनना है, ये वैरायटी बनना, आज जन्माष्टमी है, मालपुआ बनना है, फिरा इनको कराने वाला करा रहा है और करने वाले बाबा के नाम पर कर रहे हैं। बाबा का यज्ञ है, बाबा ने हमें सेवा दी है, हमें निमित्त रखा है, ना अहंकार है, न ये आता है ये काम मैं ही करूं क्या, ये भंडारे का काम मैं वही बबोर्ची थोड़ी हूं। लेकिन देखो कितना प्यार से, कितने दिनों से धोबी घाट वाले धोबी घाट कर रहे हैं, खाना बनाने वाले खाना बना रहे हैं, खरीदारी करने वाले खरीदारी कर रहे हैं। आज करीब 50 डिपार्टमेंट अपना पूरा कारोबार देख कर संभाल रहे हैं। इतना बड़ा यज्ञ 3 स्थानों पर चल रहा है, भगवान का भंडारा और भंडारी सब भरपूर करने वालों ने भरपूर किया, संभालने वालों ने संभाला, खिलाने वालों ने खिलाया, और इतना सब जो दुआएं देके जाते हैं संतुष्ट होके जाते हैं तो ये सब का शेयर अपने आप जमा हो जाता है। तो आप सब यज्ञ के सेवाधारी सच्चे स्नेही बच्चे जिनके तन मन धन के सहयोग से इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, किस लिए यज्ञ रचा गया, नई सृष्टि की स्थापना के लिए, सतयुग बनाने के लिए। और उस सतयुगी दुनिया में सब बच्चों का एक तरफ यज्ञ रक्षक के रूप में बहुत बड़ा सहयोग योगदान है, और दूसरी तरफ जो कुछ उनके पास है, जो शक्तियां हैं, कहने से करे वो मनुष्य, बिना कहे करे वो देवता, और कहने से करे वो ध्यान देना, जो कहने से भी न करे वो कौन। इसलिए बाबा ने हम सबको संगम पर देवता बनाया है, कहने की आवश्यकता क्या है। जो बाबा के वारिस बच्चे होते हैं, जो अपना समझते हैं यज्ञ को, वो देखते हैं कहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है, वो अपने आप संकल्प चलाते हैं। हम लोगों को क्या संकल्प करने की जरूरत, हम सहयोग दे सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। हमें बाबा ने अगर कुछ दिया है, दिया तो उसने ही है, सबको दाता नहीं दिया है ना। जिसके पास जो कुछ शक्ति है, हमने तो भक्ति में यही कहा था, भगवान जब आप आएंगे तो हम आपके ऊपर सब कुछ वारी करेंगे, बलिहार जाएंगे। अब वो आकर के कहता है, अच्छा बच्चे जो कहा था वो करके दिखाओ, भी वारी कर दिया सब कुछ कि मेरा है मेरा है मेरा है, अधिकार रखा है। ये मेरेपन का जो अधिकार है वही बंधन है। और जिस दिन कह दिया ये सब, बाबा तेरा है तेरा है तेरा है, बाबा कहे मैं लेके क्या कहूंगा, तुम संभालो इसको। लेकिन बाबा की अमानत समझ के संभालो। अमानत को बहुत ध्यान से संभाला जाता है। मान लो कोई कहीं बाहर जा रहा हो, बहुत नजदीक वाला निकट प्यारा संबंधी हो, पड़ोसी हो संबंधी हो मित्र हो, और आपको कोई प्रॉपर्टी पैसा या धन या जेवरात रख के जाए, भाई हम एक के लिए 6 के लिए हम विदेश जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, आप हमारी अमानत प्यार से संभालना। इतना ध्यान रखेगा कहीं कुछ हो न जाए इसको, उसकी अमानत है ये, वो व्यर्थ नहीं करेगा उसको। अगर उसकी स्वीकृति है तो उसको भले काम में लगा करके उससे पैसा बढ़ाएगा, उसका नुकसान होने नहीं देगा। अब बाबा ने अपने बच्चों के आगे ये अमानत देख दी, तेरे तन अमानत है, ये मन भी तेरी अमानत है, ये धन भी तुम्हारे पास जो है सब प्रभु अमानत है, अब इसको तुम प्यार से संभालो, एक कौड़ी भी व्यर्थ न जाए, देखा देखी में खर्च नहीं करना, इधर दिया उधर दिया व्यर्थ कर दिया, संभालो बढ़ाओ और इकोनॉमी से चलाओ। जरा भी ऐसे नहीं देखा देखी में इसने इतना खर्चा अपने परिवार के लिए किया, कई होते ना देखा देखी में अपनी बेटी की शादी करेंगे, एक भाई मिला हमने ऐसे ही पूछ दिया तेरी बेटी की शादी में कितना खर्चा करेगा, कहता है हमारे पड़ोसियों ने अपनी बेटी की शादी में 50 लाख खर्चा किया है, हमको भी करना पड़ेगा। तुम बाबा का बच्चा है ना, वो तो नहीं है, तुम क्यों ये सब देखा देखी कर रहा है, नहीं इज्जत जाती है लोग उसी नजर से देखते हैं। हमने कहा हमको तो इज्जत बाबा ने कहा, लोक लाज कुल सब मर्यादाएं हमने खत्म कर दी, किसकी लाज रख रहे हो, किसके पीछे कर रहे हो। बहुत कम खर्च बाला नसीन बाबा ने सिखाया, खर्चा कम हो और काम अच्छे से अच्छा हो, इसको समझ कहते हैं। आज बाबा ने इतना सब कराया, जब ज्ञान सरोवर बना उद्घाटन में बाबा आए यहाँ पर इस स्टेज पर, 18 जनवरी 95 था शायद, बाबा ने यहाँ उद्घाटन किया, उद्घाटन करके बाबा को बाहर झंडा लहराने के लिए ले गए, दादी यहाँ से निकली और वहाँ झंडे पर ले गई बाहर। अब बाबा ने ऐसे नज़र दौड़ाई, जितने अंदर बैठे थे, अंदर तो 1500 लोग थे, ऊपर नीचे सब भरा था, और बाहर 3000 लोग खड़े थे, और बाहर देखा गोल 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 बनाया है। बाबा यहाँ करके सब इंजीनियर्स को बुला लिया, इधर आओ, क्या बनाया है सब। बाबा का लक्ष्य था 5000 लोगों के रहने की, 5000 लोगों के बैठने का हाल हो, कुछ कारण बने वो तो अलग बात है, बस बाबा ने एक इशारे में बोला और फिर शांतिवन का निर्माण कराना शुरू कर दिया। युक्ति युक्त शांतिवन का निर्माण हुआ है, इसके तुरंत बाद उद्घाटन होने के तुरंत बाद नीचे, पहले पहले हमारे भोपाल भाई थे, नाम सुना होगा, उनको पता नहीं क्या धुन लग गई, जमीन लेनी है शांतिवन में लेनी, आबू रोड में तलहटी में लेनी, दादी मना करे नहीं तुम कहीं बाहर नहीं, हम आबू से नीचे नहीं उतरेंगे, लेकिन उसको मैं हम लोगों के साथ रहता था सोता था, शाम को आए बाबा मुझे सोने नहीं देता, दादी कहती नहीं लो और बाबा मुझे बार बार नींद में जगाता है, जाओ बच्चे ले लो। रमेश भाई से दोस्ती कर लिया उसने, रमेश भाई हमारे अकाउंटेंट थे, उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं ले लो थोड़ी बहुत जमीन। जब जमीन ले लिया तो दादी ने हम लोगों को 5-7 लोगों को मोहिनी बहन को साथ में भेजा, देखो जा करके इसने क्या लिया है कहाँ पर लिया है। तो हम 5-7 भाई और मोहिनी बहन दादी के साथ जो रहती थी हम लोग गए वहाँ, तो देखा उसने जमीन करीब 10-12 एकड़ ले लिया था, और वहाँ एक बहुत कुटिया बना दिया छप्पर की, और एक माता को वहाँ बिठा दिया, वहापुर की माता जिसका केस था ना रज्जू माता, उसको वहाँ बिठा दिया। तो हम गए तो वहाँ पर तो जंगली था पूरा, खेत ही थे सब, तो चक्कर लगाया कहाँ कहाँ लिया है, देखा सब कुछ, फिर हम लोगों को कहा हम आए हैं दीदी यहाँ पर हम पिकनिक करें, बरगद के झाड़ के नीचे बैठे, तो वहाँ पर कंडे पड़े थे, गाय बैल बहुत होते हैं ना जानवर, वो कंडे इकट्ठे किए, उसकी भट्टी जलाई और आटा ले आए, संगम होन ही था हमारे पास आबू रोड में, आटा ले आए, थोड़ी सब्जी खरीद के ले आए, बैंगन वगैरह वहीं पर उसमें भूंजे और बाटी बनाई, और फिर कहा मोहिनी बहन को कि बाबा को भोग लगाओ, क्योंकि ट्रांस में जाती थी। तो बरगद के झाड़ के नीचे पहली पिकनिक किया, बना लिया 2-3 सब्जी ऐसे, आलू भून लिया, बैंगन भून लिया जो भी थे, और रोटी बना लिया गोल गोल बाटी, भोग लगाने के लिए बैठे तो पहले एक बार ऐसे झटका गई ऊपर, तुरंत आ गई, कहते तुम लोगों ने इसमें सब कुछ नहीं रखा है क्या, बाबा ने वापस भेज दिया, देखो क्या नहीं रखा है। तो सब चेक किया तो उसमें पानी नहीं रखा था। तो बाबा कहता है इसमें पानी नहीं है, पानी गिलास में रखो, पानी का बड़ा महत्व होता है ऐसा है था। तो जब पानी रखा और फिर दोबारा गई तो बाबा ने उसको वहां का सारा दृश्य दिखाया, विस्तार दिखा दिया ट्रांस में ही। आके कहती है कि बाबा का बहुत बड़ा प्लान दिखाई देता है यहाँ। दादी तो मना कर रही है लेकिन बाबा ऐसा प्लान बता रहा है कि यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। बस भोग तो खाया, ब्रह्मा भोजन किया, दादी के पास वापस आए, दादी ऐसे ऐसे हम लोगों ने पिकनिक किया, बाबा को भोग लगाया। तो बाबा ने ऐसे ऐसे कहा कि यहाँ तो बहुत बड़ी बाबा की प्लानिंग है, बाबा की प्लानिंग और बड़ों की प्लानिंग अंतर बहुत था। फिर दादी ने कहा अच्छा बाबा की प्लानिंग तुम लोग कह रहे हो तो चलो एक बार टेंट में मेला करते हैं, बड़ा मेला करते हैं, 10,000 बाबा के बच्चों को बुलाते हैं। अब इतना बड़ा स्थान लिया तो 10,000 क्या बड़ी बात, बुला लो। तो सबको निमंत्रण दिया और टेंट में मेला किया। 10,000 के रहने की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम उसी में बनाए गए टीन सेट में, बड़ा हाल पंडाल लगाया गया जिसमें 10,000 बैठे। एक दो कमरे बने थे जिसमें हम लोग थोड़ा जो भी अमानत आती थी वो संभालते थे। बाबा का प्रोग्राम पूरा हुआ और दूसरे दिन आई आंधी, तेज तूफान, पानी, बरसात और सब के सब टेंट खत्म, उड़ गए, सबके बिस्तर गीले हो गए। अब दादी की नींद फिट गई। दादी कहती बाबा को बोलो बाबा ये क्या हो गया। गुलजार दादी को बोला बाबा से पूछो ये सब इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब बाबा तो रमणीक है, जानता है कैसे इनको मोड़ना है बच्चों को। बाबा बड़े प्यार से कहता है देखो आप लोगों ने टेंट में किया इसलिए ऐसा हुआ, अब आगे इसके लिए यहाँ पर बड़े बड़े हाल बना दो, 100-100 के हाल बना दो और बाबा के लिए थोड़ी सी टीन सीट लगा देना, स्टेज बना करके बाबा के लिए टीन सीट का स्टेज बना दो, बाकी बच्चों के लिए बड़े बड़े 100-100 के हाल बना दो। बस वो तूफान ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, 100-100 के हाल बना दिए गए। वृक्ष तो भोपाल भाई ने पहले लगवा लिए थे, उसी अनुसार उसका नक्शा बना, हाल बनने लगा, इतना बड़ा डायमंड हाल बन गया। बनते बनते कैसे बना, कैसे जादूगर की जादू चलती है, कैसे करण करावन हार कराता है और सबके सहयोग से बनता है। बाबा दादियों का एक लक्ष्य रहता है, इसने कोई आके कहे मेरा 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ लगा लो, पूरी पूरी बूंद बूंद से तालाब, सब बच्चों का एक एक रुपया लगेगा तब इसमें सफल होगा। जितने ब्राह्मण हैं सबकी अंगुली लगनी चाहिए। ज्ञान सरोवर बनाया, अखबार वाले आके पूछते हैं दादी इसमें कितना खर्चा किया, कहती 1 रुपया। वो देख कर 1 रुपये में इतना बड़ा डायमंड, इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बना दिया। हाँ भाई हमने सब बाबा के बच्चों को कहा था 1 रुपया रोज निकालो, 1 रुपया रोज निकालो। तो जितना निकलता है 30 दिन में, एक व्यक्ति ने 30 रुपया डाले, 100 का क्लास है तो कितना 1000 आ गया। ऐसे लाखों रुपया आया सबके एक एक रुपए के सहयोग से, 1-1.5 साल में ज्ञान सरोवर बन गया, क्या बड़ी बात है। ऐसे ही शांतिवन बन गया, मानसरोवर बना, मनमोहिनी वन बना, आनंद सरोवर बना, आज 20,000 की व्यवस्था हो। कैसे हुई? सब बच्चों के सहयोग से हुई, स्नेही बच्चों ने गुप्त सहयोग दिया है तो आज हम इतना आराम से आके रहते हैं, बैठते हैं, 20,000 की सब व्यवस्थाएं हैं और करण करावनहार बाबा दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ करा रहा है। कोई कहे बाबा तो आता ही नहीं है, बाबा का तो भी पाठ पूरा हो गया, बाबा कहता जब तक संगम युग है तब तक ब्रह्मा की आत्मा कहीं जा नहीं सकती, स्थापना पूरी नहीं हुई है बाबा चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो हम बाबा को देख रहे हैं, बाबा भी अव्यक्त वतन में, भले साकार तन नहीं लेता लेकिन सूक्ष्म में उनकी हाजिरी है, उनकी उपस्थिति है और सब अनुभव करते हैं कि सब कुछ करण करावनहार बाबा करा रहा है। कितना रिफ्रेश होके जाते हैं, नए नए बाबा के बच्चे आते हैं, जिन्होंने कभी साकार में दादियों को भी नहीं देखा, वो भी इतनी अच्छी पालना लेके जाते हैं, कौन कराता है सब। तो बाबा का यज्ञ है, बाबा करण करामनहार है, और हम सबको कहता है बच्चे अपना भाग्य बनाने के लिए गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली चाहिए सर, ज़्यादा नहीं चाहिए, एक अंगुली। और एक अंगुली देते हैं तो हाथ ही ले लेता है। तो सबकी अंगुली लगी है ना बाबा के कार्य में, तो सब अपनी अपनी अंगुली लगाना, जिस प्रकार का सहयोग हो सकता है यज्ञ के लिए, इसका विस्तार हो, यज्ञ निर्विघ्न रहे। जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं है हुई है, तब तक यज्ञ चलता है, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। चाहे जितनी बाधाएं आए, जितने विघ्न आए, चाहे जो कोई कहे, चाहे कोई अपना बाबा को अलग बुलाना शुरू कर दे, हैं? आज बाबा कह रहे थे मैं कहीं नहीं आता, लोग अलग अलग बाबा बैठा के बैठ गए। सब माया प्रवेश होती है, कई आत्माएं इस वायुमंडल में हैं, कहीं ना कहीं किसी के तन में बाबा की आवाज़ निकालना शुरू कर दें तो कहीं भटकना नहीं, अटकना नहीं, लटकना नहीं। बाबा का घर है, बाबा का यहाँ यज्ञ में निवास है, बाबा कहीं इधर उधर भटकेगा नहीं। तो आप सब बहुत पक्के यज्ञ स्नेही, यज्ञ सेवाधारी और यज्ञ रक्षक बन करके बाबा का नाम रोशन करो। ओके, ओम शांति।